मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जो दूसरी ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वह है मालवा संस्कृति। मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में बहने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के किनारे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अनेक पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। ये अधिक बस्तियाँ तो नर्मदा की सहायक नदी घाटियों में बसी थीं। इस संस्कृति के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम जिन दो महत्वपूर्ण केंद्रों का उत्खनन किया गया वे हैं मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित नर्मदा के उत्तरी तट पर माहेश्वर, जहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तथा दक्षिणी तट पर नावदा टोली। इसमें नावदा टोली से इस संस्कृति का स्पष्ट स्वरूप आज तक प्राप्त होने से इसके लिए मानक शब्दावली के रूप में इसे नावदा टोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति नाम ही अधिक उचित है। इसका प्रभाव इतना विस्तृत था कि महाराष्ट्र के अनेक पुरा केंद्रों पर इसका प्रभाव वहाँ की पात्र परंपरा से ज्ञात होता है। बसाल में बहुत से छोटे छोटे गांव के अवशेष के साथ कुछ बड़े गांव बसे थे, जैसा सर्वत्र चलन था। बड़े गांव में थे नागदा, एरण एवं नावदा टोली। इनमें नावदा टोली ही सबसे बड़ी बस्ती थी। यह दो वर्गों में बसी थी, जैसे हड़प्पा में नगर बसाए जाते थे। उत्खाताओं ने माना है यहाँ रक्षा प्राचीर रही होगी तथा यह भी मूलतः नर्मदा से उत्तरी किनारे पर ही बसी होगी, जहाँ से पीछे दक्षिण की ओर बसाव को बदल लिया गया होगा। बस्ती के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी होती थी, जहाँ एक किनारे नर्मदा बहती थी वहाँ तीन ओर ही सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी, जैसा एरण से ज्ञात होता है। यह प्राचीर मिट्टी का बना होता था, जैसा नागदा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसका आधार चौड़ा होता था और ऊपरी भाग पतला। इस प्राचीर के किनारे किनारे परीक्षा होती थी कि बाढ़ का पानी उसी में गिर जाए। एरण की खुदाई से इसका ज्ञान मिलता है। नागदा का सामान्य नगर सड़कों और गलियों में विभक्त था, जिसके किनारे आवास में बने थे। सड़कें सीधी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जाती थीं। इनके किनारे पत्थर के टुकड़ों का फुटपाथ बना था। यहाँ कोई पूरा मकान नहीं मिला है। नागदा में मालवा सभ्यता दूसरे केंद्रों से विशेष बसाव दिखता है। कच्ची और पकी ईंट प्रयोग की गई हैं तथा कई बड़े बड़े कमरे हैं और चार मुंहों वाला चूल्हा है। कमरे के फर्श कड़ी मिट्टी के बने हैं। गलियाँ कच्ची ईंटों की बनी हैं, जो 2.28 × 2.13 मीटर के लगभग हैं। यहाँ दो कमरों का एक मकान मिला है, जिसमें फर्श में चौकोर गड्ढा बना है। इस गड्ढे की चारों दीवारें गारे से जोड़ी गई हैं, जिनमें राख, जली लकड़ी के टुकड़े, पूजा की सामग्रियों के मिलने से लगता है कि यहाँ यज्ञ कुंड रहा होगा। नावड़ा टोली से गोल और चौकोर झोपड़ियों के अवशेष इसके चारों स्तर से मिले हैं। प्रथम स्तर से गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। गोल झोपड़ियों हेतु लकड़ी के खंभों को गाड़कर उस मिट्टी की दीवार 30 से 60 सेमी मोटा बनाते थे। यह दीवार नीची होती थी, जिन पर फूस का छाजन होता था। इसकी मोटी फर्श को बालू मिली पीली मिट्टी से बनाते थे। ऐसी झोपड़ियाँ 2, 3, 4 एक साथ होती थी, जो संभवतः एक आवासीय भवन रहा होगा। अतः एक में ही चूल्हा रहा होगा। यहाँ चतुर्भुजाकार बड़े बड़े आवास मिले हैं, जिनकी मिट्टी की दीवारें चौड़ी हैं तथा उनकी छत के लिए पत्तों का साजन डंडों पर टिका कर रखा होता था। इनके फर्श मजबूत हैं। किन्हीं में खत्ती के लिए चबूतरा बना है। कुछ चबूतरे जले हुए मिले हैं, शायद एक खलिहान के लिए बने होंगे। रात को पशुओं को बाड़े में रखा जाता था। इसके लिए भी फर्श बनाकर किनारे के स्तंभ गर्त में खम्भे गाड़कर ऊपर बांस तथा डंडों का छाजन किया जाता था। इन स्तंभों के चारों ओर लकड़ी का बाड़ बनाते होंगे, जिसके दोनों ओर मिट्टी पोती जाती होगी। यहाँ से बड़े और बहुमंजिले भवन के अवशेष भी मिले हैं। गोल और आयताकार दोनों ही प्रकार की इमारतें एक स्थल से यहाँ साथ साथ मिली हैं। मालवा संस्कृति का विस्तार महाराष्ट्र के इनाम गांव और दायमाबाद में ही देखा जा सकता है। मालवा प्रकार के भवन यहाँ से मिले हैं, पर सभी अव्यवस्थित और योजना रहित हैं। यहाँ की झोपड़ियों की दीवारें छोटी हैं, ये 50 सेमी से ऊंची नहीं हैं। इनमें दो मुँह चूल्हे मिले हैं। शिकार किए गए जानवरों को भुनने के लिए बाहर अलग अग्निकुंड बना है। कृषि उत्पाद में चावल, काला चना, उड़द, मूंग, लाल चना, मटर आदि नावदा टोली में तथा ज्वार और बाजरा महाराष्ट्र क्षेत्र में पैदा होता था, जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अनाजों को पीसने के लिए उन्हें फुलाकर चक्की में डालते थे। ऐसा माना गया है कि पहले ये अनाज को जला देते थे, अधिक जले हुए को फेंक देते थे तथा कम जले हुए को पीस कर आटा से रोटी बनाते थे। मिट्टी के तवे पर रोटी पकाई जाती थी। किसी बीज का तेल भी प्रयोग किया जाता होगा। अभी तक हल के अभाव में उत्पादन विधि के विषय में बड़ी अनिश्चितता थी, पर बाणावली से मिट्टी के हल की प्राप्ति के कारण स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का उपकरण प्रयोग में लाया जाता होगा। मृत्तिका उद्योग विकसित था। पांडुरंग के बर्तनों पर हरे भूरे रंग का अंकन हुआ है। ये बर्तन चाक के बने हैं, जिनके किनारे रुखड़े हैं तथा रंग मोटा है। इनके अतिरिक्त अनेक कटोरे, तस्तरियाँ, ऊंची गर्दन के झांझ भी हैं। इन पर आरेखन ज्यामिति आकृति में किया गया है। भारत में प्राप्त चित्रित बर्तनों में नावदा टोली में सर्वाधिक वैविध्य हैं। महाराष्ट्र से भी इस काल के ऐसे ही बर्तन मिले हैं, पर वहाँ मालवा की स्थानीय प्रवृत्ति में कुछ भिन्नता है। इनाम गांव से भट्ठा भी मिला है, जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। दूसरे प्रकार की पात्र परंपरा में प्रथम दो स्तरों में कृष्ण लोहित रंग के कटोरे, झांझर आदि मिले हैं। ये बनावट में मोटे और भद्दे हैं तथा इनका किनारा काला है। इस पर गाढ़ा लेप है, जिस पर काले रंग में फलक उद्योग का आरेखन किया गया है। यहाँ से उपयोगी बर्तन भी पाए गए हैं, जो पकाने और संग्रह में के काम आते थे। ये हाथ के बने पात्र हैं, जिन पर कोई प्रलेपन नहीं किया गया है। इसमें कटोरे, बेसिन, मध्य आकार के भोजन पकाने के बर्तन हैं। कुछ के गर्दन तक पर वक्र तथा परस्पर काटती रेखाएं बनी हैं। नावदा टोली में सर्व प्रमुख हैं बर्तन रखने का चौकोर आधार। चौड़े मुंह के भांड मिले हैं, जिसका आधार चौड़ा है और बीच का भाग उभरा। इसके कोर अंगुलियों से दबाकर बनाए गए हैं। इस पर मेहराब, मानव युग, बंदर, कछुआ और मगर का भी आरेखन किया गया है। फलक उद्योग विकसित था। नावदा टोली से 30,000 फलकें इकट्ठा की गई हैं, जो मध्य प्रदेश में प्राप्त चलसोडनी की बनी हैं। क्रोड भी यहाँ बड़ी संख्या में मिले हैं। लंबोतर क्रोड से सामानांतर धार के फलक निकाले जाते थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के फलक पाए गए हैं, जैसे नुकीले, अर्धचंद्राकार, कलम के चाकू की तरह, भोथर आदि। ये हड्डी, पत्थर, लकड़ी की मूठ में लगाए जाते थे। ये नावदा टोली में ये घर घर बनाए जाते थे। ताम्र उद्योग बहुत विकसित नहीं होने से इसके उपकरण थोड़े ही मिले हैं। नावदा टोली से भाले की नोक, तलवार, नागदा से अंगूठी और कड़ा आदि मिले हैं। इन पर बनाने वाले का अपना चिन्ह भी अंकित है। इससे लगता है कि ताम्र उपकरण निर्माताओं का एक वर्ग वहाँ था, जो ताम्र पाषाणिक बस्तियों को इसे तैयार करके देता था। मनका उद्योग में अगेट, जैस्पर, कार्नेलियन, चर्ट आदि के मनके यहाँ बनते थे। नावदा टोली इसमें धनी था, क्योंकि यहाँ से 2800 मनके एकत्रित किए गए हैं। ये गोल, ढोलाकार, लंबोतर आदि हैं। मालवा के कलाकार इसमें छिद्रित करने तथा इसे छिद्रित बनाने में कुशल थे। दोनों किनारों से सुराख कर बीच में इसे मिलाया जाता था। इसके लिए इनाम गांव से कैल्सोडनी का एक गिरमिट भी मिला है। पत्थर उद्योग में चक्कियां, हथौड़ा, गेंद आदि मिले हैं। इनके बांट भी थे, निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। पॉलिशदार कुल्हाड़ियाँ तथा छिद्रित तस्तरियाँ भी मिली हैं। धर्म, यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला है। मातृ देवी की मूर्तियाँ भी कम ही मिली हैं। नावदा टोली से ये केवल 5 ही प्राप्त हैं। एक अन्न इकट्ठा करने वाले बर्तन पर भी बनी हैं, जिसमें दाहिनी ओर एक औरत और बाईं ओर मगर की आकृति है। यह दुर्गा माता का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। इसके साथ बंदर और कछुए की आकृति होने से इसे पशुओं की शासिका कहा जा सकता है। देव पूजन का उदाहरण नावदा टोली से प्राप्त दो प्यालों के तल पर मानव आकृतियों के अंकन से होता है, जिनके बाल बिखरे और हाथ में भाला है। इन्हें रुद्र का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। उसी बर्तन पर एक चटाईदार बालों वाले संभवतः मांद्रिक जादूगर जाति के व्यक्ति का अंकन है। इसी प्रकार दैमाबाद से मालवा के पात्र पर चित्रित एक व्यक्ति है, जो टहनियों के गुहगोपन के लिए पहना है। उसके दोनों ओर कई पशु पक्षी, मयूर, बारह सिंघा, हिरण आदि हैं। जो उसके प्रति श्रद्धावान हैं। लगता है यह किसी धार्मिक महत्व का बर्तन होगा। पशु पूजा में कैथा से सांड संप्रदाय की पूजा का ज्ञान मिलता है, जो दूसरे केंद्रों पर बहुत कम फैला था। संभव है कैथा से ही लोग यहाँ आकर इसे चलाए होंगे। प्रकाश से कछुआ अंकित एक ताबीज मिला है, जो इसके पूजन का संकेत देता है। अग्नि पूजा का ज्ञान यहाँ से प्राप्त एक वेदी प्रकार के चबूतरे से होता है, जो जलने के कारण लाल हो गया है। इसे संभवतः इन्होंने हड़प्पीय लोगों से सीखा हो। 1400 ईसा पूर्व के बाद मालवा संस्कृति का सहसा अंत हो गया। संभव है प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण इस संस्कृति का अंत हुआ है, ऐसा राजस्थान की झीलों के सूखने से ज्ञात होता है। इनके निर्माता के विषय में पहले संकलिया का विचार था कि ये लोग उत्तर से आकर यहाँ बसे थे, पर नावदा टोली के उत्खनन के बाद यह मत उलझ गया। अब इन्होंने माना कि पश्चिमी एशिया के लोग यहाँ आए थे, जो इस सभ्यता के जनक थे। डॉक्टर राव और स्वराज प्रसाद गुप्त ने इसका विरोध किया है, क्योंकि मालवा की पात्र परंपराएं वहाँ उपलब्ध नहीं थी। आई ए जेडनेपोस्की ने फरगना घाटी की सांस्कृतिक परंपरा से इसकी समता स्थापित करने का प्रयास कर उन्हें इसका जनक बताया है, पर यह समता उचित नहीं लगती है, अतः इस विषय में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। आई ए जेडनेपोस्की ने फरगना घाटी की सांस्कृतिक परंपरा से इसकी समानता स्थापित करने का प्रयास कर इन्हें इसका जनक बताया है, पर यह समता उचित नहीं लगती है, अतः इस विषय में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। अब दक्षिणी भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत जोरवे संस्कृति है। यह महाराष्ट्र का प्रमुख ताम्रपाषाणिक केंद्र रहा है, जिसका सांस्कृतिक विस्तार संपूर्ण राज्य में केवल पश्चिमी समुद्र तट और उत्तर में विदर्भ को छोड़कर सब जगह था। इसके तीन प्रमुख केंद्र ज्ञात हैं: तापी नदी की घाटी में प्रकाश, प्रवरा गोदावरी घाटी में दैमाबाद और मीमा घाटी में इनाम गांव। एक बार पुनः: तापी नदी की घाटी में प्रकाश, प्रवरा गोदावरी घाटी में दैमाबाद और मीमा घाटी में इनाम गांव। इनमें दैमाबाद अत्यधिक विस्तृत है। जोरवे संस्कृति के नामकरण का कारण है कि सर्वप्रथम इस संस्कृति का ज्ञान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जोरवे पुरास्थल के कारण है कि यद्यपि इस पुरास्थल पर सीमित उत्खनन होने से इसका व्यवस्थित ज्ञान अन्य पुरावस्थलों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही संभव हो सका है। यहाँ व्यापक उत्खनन किया गया है। तापी और गोदावरी नदियों पर इसके अधिकाधिक पुरास्थल मिले हैं, जो काली मिट्टी पर हैं। पुरास्थलों से प्राप्त बस्तियों का आकार छोटा है। इनमें अधिकांशतः ग्रामीण बस्तियाँ थी, यथा सोनगांव, चांडोली, बाकी, आपेगांव आदि। तापी नदी के तट पर पाए गए पुरास्थलों में पुरवा बस्ती क्षेत्रफल में छोटी थी तथा संख्या में कम। ये खेतिहर ग्राम कही जा सकती है, जहाँ बसाव के साथ घरों के सामने तथा गांव से सटे खेत थे। कुछ सामयिक आवासीय क्षेत्र भी यहाँ होते थे, जहाँ व्यापारी कुछ समय तक आकर ठहरते थे। यहाँ तटीय क्षेत्र में जो गुफाएं मिली हैं, वे इसी प्रयोजन की रही होंगी। यहाँ दो प्रकार की बस्तियाँ मिली हैं, एक जिनमें कृषि संपन्नता थी तथा दूसरे जहाँ कृषि की कमी थी। प्रायः सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से ये नदियों के किनारे ऊंचे जमाओं पर बसी थी, जहाँ नदियों का संगम होता था और व्यापार की सुविधा रहती थी। बसाव की दृष्टि से इनको दो वर्गों में रख सकते हैं, प्रारंभिक और बाद की। प्रारंभिक वर्ग में आयताकार भवन मिट्टी की नीची दीवारों के बने हैं, जिन पर टहनियों का छाजन है और वे मिट्टी से पुते हैं। प्रायः सभी मकान एक पंक्ति में बने हैं, जिनकी लंबाई पूर्व पश्चिम है। दो घरों के बीच गली है, जिनमें कभी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े या बर्तन के टुकड़े पक्का करने के प्रयोग के लिए डाल दिए जाते हैं। इनाम गांव के मकान आकार में छोटे हैं, फर्श काली मिट्टी पर पीली मिट्टी डालकर बनाया गया है एवं मिट्टी से पुता है। घर के अंदर छोटे चूल्हे के लिए अग्निघर तो होते थे तथा हवा से बचाव के लिए मिट्टी की दीवार भी बनी होती थी। बर्तन रखने के लिए वहाँ एक प्रस्तर खंड रखा होता था, यह भी मिट्टी से पुता होता था। आंगन के चूल्हे और अनाज के भंडार के लिए चूने से प्लस्तर किया गर्त और खत्तियाँ भी होती थी। उत्तर जोरवे काल में 1200 ईसा पूर्व में से इसमें परिवर्तन आया। अब ये लोग गोल झोपड़ों में रहने लगे। जिनका फर्श काली पीली मिट्टी के अंतर का बना होता था। यह कूट कर गोबर मिट्टी से लीपा जाता था। यहाँ गर्त चूल्हे तो मिले हैं, पर भंडारण गर्त नहीं है। चूल्हे भी हर घर में नहीं है, क्योंकि कई कमरों का मिलाकर एक मकान बनता था जिसमें एक चूल्हा होता था। गोल झोपड़ियों का कारण वहाँ की तेज हवाएं रही होंगी। मिट्टी की नीव युक्त मीटर एक मीटर की दीवारें बनती थीं और पत्तों का छाजन बांस के ठाट पर किया जाता था। बीच में कोई स्तंभ गर्त नहीं मिला है कि उसमें लगे खंभे पर छाजन टिक सके। कुछ अस्थायी झोपड़ियाँ भी मिली हैं, जिसके लिए फर्श पर डंडे खड़े कर उनका ऊपरी सिरा जूड़े की तरह एक में बांध कर उनके किनारे घास या बांस के डंडों के टाट की दीवार बनाकर मिट्टी लेप देते थे। यह 6 से 8 माह के लिए बनते थे। ऐसी झोपड़ी बाकी नामक स्थान में भी मिली है। अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली मारने का व्यवसाय ये अपनाते थे। इनकी खेती वर्षा की कमी से सूख जाती थी। ये जौ, गेहूँ, रागी, कुलथी, चना आदि बोते थे। बाजरा भी तापी घाटी में होता था। हल और पाटा की प्राप्ति बाकी को छोड़कर अन्यत्र से नहीं हुई है। ये गोपा लगाकर उसमें बीज डालते थे। इनाम गांव से इसके विषय में विशेष जानकारी मिलती है। बाढ़ के समय पानी इकट्ठा करने के लिए विशेष रीति से मिट्टी का मेड़ घेर कर गड्ढा बनाते थे, जिसमें पानी रोककर सिंचाई करते थे। यहाँ मेहरगढ़ से कपास की प्राप्ति होने से लगता है कि विश्व को रुई का ज्ञान यहीं से हुआ होगा। सिल्क के धागे से उसके कीड़े से निकालने का कार्य निवासा में होता था। निवासा से प्राप्त एक हार में ऐसे धागे लगे हैं। ये मांस अधिक खाते थे, तभी जानवरों की अस्थियाँ बड़ी मात्रा में मिली हैं। फलक उद्योग यहाँ प्रमुख था। इनाम गाँव से बहुत से फलक प्राप्त हुए हैं। ये चलसुड़नी और चर्चर्ट पत्थरों से बने हैं। बस्ती तथा उसके बाह्य फलकीकरण किया गया है, जिससे पूर्ण और अपूर्ण फलके प्राप्त हुई हैं। इसमें लंबाई में एक या दो धार बनाया जाता था। मृदभांड उद्योग में चाक का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए होता था। यहाँ पकाने के लिए 4 आवा पाए गए हैं, जिनके लिए गड्ढा खोदकर नीचे एक मोटा चबूतरा बनाते थे तथा गड्ढे के किनारे मिट्टी की 2 अलग अलग दीवारें चारों ओर बनाई जाती थीं, जिनके नीचे खाली जगह को राख से भरते थे। ये दीवारें सलामीदार होती थीं। इस गड्ढे के बीच में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण 2 और दीवारें खींचकर इसे 4 भागों में बांटते थे। प्रत्येक भाग में धूप के सूखे बर्तन एक पर एक सजाकर रखकर पकाते थे। ये मृदभांड काले पर लाल रंग के हैं। संभवतः इन्हें 2 बार पकाया गया है। यहाँ बर्तनों में प्रमुख हैं ऊंची बार का कटोरा और टोटीदार झांझरा। इनके कंधे तथा किनारे पर सफ़ेद चित्रकारी की गई है। कटोरे का तल गोल है तथा ये छोटे बड़े सभी आकार के पाए गए हैं। पर तस्तरियाँ कहीं भी नहीं मिली हैं। किन्हीं स्तर पर लाल पर काली चित्रकारी भी हुई है। ये सभी चाक के बने हैं। इन आरेखन में समूह में रेखाएं खींची गई हैं। प्राकृतिक दृश्य पशुओं का अंकन, घोड़ा, कुत्ता, हिरण आदि मानव तथा दैत्य आकृतियों का भी अंकन हुआ है। कुछ विचित्र चिन्ह भी बनाए गए हैं। लाल और भूरे रंग के बर्तन हाथ के बने हैं, भद्दे प्रकार के विशेष उपयोगी हैं। मिट्टी के पिंडों को सजाकर मुख बनाना भी यहाँ के कुछ बर्तनों की विशेषता है। मिट्टी की बत्तियों को जोड़कर बनाए गए घड़े भी मिले हैं। परवर्ती जुर्वे में दुर्गा की तरह स्त्री युक्त चिता की आकृतियों का भी अंकन पाया गया है। धातु प्रयोग में धातुओं को पिघलाने, आकृति बनाने, सांचे में सामग्रियों को तैयार करने की विधि से ये परिचित थे। प्रमुख उपकरणों में कुल्हाड़ी, मनके, बंसी आदि थे। इन्हें पिघलाकर और हथौड़े से पीटकर फैलाते थे। सोने का एकमात्र कर्णफूल मिला है। चूने का भी उद्योग प्रचलित था। धर्म के विकास में मातृ देवियों का प्रमुख स्थान था। 2 प्रकार की सिरयुक्त तथा सिर विहीन मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं। इनके स्तन गोल हैं, जिससे यह उर्वरता की देवी लगती हैं। एक जार पर मानव के सिर युक्त पैंथर का अंकन मिला है, जो संभवतः दुर्गा का प्रतीक रहा होगा। ये घर के एक छोटे छेद में रखी हुई मिलने से देवी मानी जा सकती हैं। एक संदूक में जो घर से खुदाई में मिला है, चोटीदार बाल, मुड़े हाथों वाले तथा सीने पर पड़े लटकन से इसे उर्वरता की देवी माना जा सकता है। जो देव मूर्तियां मिट्टी की मिली हैं उनके चेहरे में कोई विशिष्टता नहीं है। इनके पैर ठिगने और हाथ छोटे हैं, ये सभी हल्के पके हैं। बस पूजा का भी चलन था जैसे सांड संप्रदाय का, जिसकी चर्चा पहले की गई है। ये पूर्वज पूजक भी थे। इसी से दाढ़ी वाले एक वृद्ध पुरुष की आकृति दायमाबाद से प्राप्त हुई है। सब विसर्जन की जो परंपरा इनके अंदर प्रचलित थी उसमें बच्चे भद्दे लाल या भूरे बर्तन में गाड़े जाते थे तथा युवा का शव लिटाकर दफनाते थे, ऐसा घर के आंगन में खोदने से मिला है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ घर में ही शव गाड़े जाते थे। वयस्कों को दफनाने के पहले उनके टखने काट लिए जाते थे कि वे प्रेत न हो जाएं। दक्षिण की ओर सिर करके इन्हें उत्तर दक्षिण गाड़ा जाता था, यानी दक्षिण की ओर सिर कर दिया जाता था तथा उत्तर की ओर पैर, उसके पश्चात इन्हें गाड़ दिया जाता था। शवदाह वाले गर्त में मृतक के साथ बर्तन भी रखे जाते थे। दोहरे तथा एकहरे बर्तनों में रखे शवदाह के उदाहरण भी मिले हैं। बच्चों के शवदाह दो बर्तनों में करते थे, जिनके मुंह के आमने सामने सटाकर रखे जाते थे। इन बर्तनों में गोड़े बने होते थे, कहीं दो कहीं चार, कभी कभी एक ही घड़े में भी दाह किया जाता था। इनके साथ दूसरे बर्तन भी शवगर्त में गाड़े जाते थे, जैसे कटोरे टोटीदार बर्तन। इस संस्कृति का काल 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। मालवा संस्कृति और जुर्वे संस्कृति के मृदभांडों की तुलना के आधार पर प्रायः माना जा सकता है कि मालवा संस्कृति से जुर्वे संस्कृति का विकास हुआ है। इसका अंत प्रकृति से हुए परिवर्तनों की देन हुई रही होगी। संभवतः वहाँ गरीबी बढ़ गई होगी, जिससे वहाँ रहना अब संभव नहीं रहा। अर्ध वन्य संस्कृति का विस्तार भी इसके पीछे एक कारण रहा होगा। इसी से लोगों ने यह स्थान छोड़ दिया होगा।